نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مدن الجد والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأنفعه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ایمان والا مومن جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو ایک چیز کا بہت فکر ہے، اور وہ فکر جو ہے حسن خاتمہ کا ہے. جس میں یہ فکر نہیں ہے اور ذرا بھی اس پہ سوچ نہیں ہے، تو اس کے ایمان میں بہت کمزوری ہے. اچھے اور ستھرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنی موت یاد ہو، کیونکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جس طرح ایک یہ زندگی ہے، ایک دنیا میں ہمیں یہاں اللہ نے بھیجا ہے، تو وہ ٹرانسفارم لائف ہے. یہ زندگی کے منتقل ہونے دوسری جگہ پر، اور یہ بہت ہی بڑا مرحلہ ہے انسان کے لیے. بالکل اسی حالت میں، اسی شعور کے ساتھ، اسی سمجھ کے ساتھ، اسی حالت کے اندر ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور ایک دن اس دنیا سے ہم نے جانا ہے. اور جب دوسری دنیا میں ہم نے جانا ہے، جب انسان دوسری جگہوں پہ سفر کرتا ہے، تو مزید پیکج کرتا ہے، سامان بناتا ہے، لوازمات ساتھ لے کے جاتا ہے. لیکن اس دنیا کے لیے انسان سارا کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے. کپڑے بھی اتر جاتے ہیں انسان کے، گھڑی بھی اتر جاتی ہیں، سامان بھی رہ جاتا ہے، عزیز و اقارب بھی یہاں رہ جاتے ہیں. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ انسان کو لمبی تیاری کرنی پڑتی ہے، بلکہ اچانک ایک دم اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو میرے پاس لے آؤ. وہ شخص وہ بازار میں ہو، یا دکان پر ہو، یا گاڑی چلا رہا ہو، یا جس حالت کے اندر بھی ہو، اس کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوتی. الحمدللہ عجیب عجیب انسان موتیں دیکھی ہیں زندگی میں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. وہ سجدے کی حالت میں جا رہا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی حرم شریف میں داخل ہو رہا ہے تو دروازے پہ انتقال ہو رہا ہے، کوئی طواف کے اندر انتقال کر گیا، کوئی مسجد نبی پہنچا تو انتقال ہو گیا، کوئی رمضان میں جا رہا ہے، وہ رمضان کے اندر مسجد نبی میں جنت البقیع کے اندر جا رہا ہے. تو یہ سب جو ہے الحمدللہ اس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ. اگر یہ انسان کے اندر اس کی فکر نہیں ہے، اس کی سوچ کبھی دن میں آتی ہی نہیں، خیال میں آتی ہی نہیں، فکر ہی نہیں ہوتی، تو سمجھو بہت انسان بہت خطرے کے اندر ہے، بہت بڑا خطرہ ہے. دنیا اس پر غالب ہو چکی ہے کہ جب تک اس کو اپنی موت یاد نہیں ہوگی، وہ سفر یاد نہیں ہوگا، تو اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ مجھے بتائیں آپ، یہ تو ایک لاجک کی چیز ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کل جانا ہے، انڈیا جانا ہے میں نے، और आज के एक हफ्ते के बाद जाना है, तो वो आदमी के जहन के ऊपर एक बर्डन रहता है कि मैंने जाना है, जाना है, कपड़े पैक करने हैं, किसी से बात कर रहा है या मैंने टिकट लेने जाना है, यार मुझे मिले आप सलाम दुआ बस, ये मतलब अभी टिकट लेने में जाना है जी, हालांकि उसको उसके टिकट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो लेकिन उसने वो बात ज़रूर बात कर देनी है बीच में कि जो उसके जहन पर सवार है, मैं आपसे मिल रहा हूँ, हाँ क्या हाल है, ठीक ठाक है, भाजी भी भाजी मैंने तो अभी एयरपोर्ट भी जाना है जी, अब बीच उससे क्या ताल्लुक होता ही नहीं होता ऐसे, ये क्या क्या चीज़ें हैं ये बता रही है इंसान के शोर में कि इसको उस सफ़र का कितना फिक्र लाहक है, कि उसके जहन में ये घूम रहा है कि जिस आदमी से नॉर्मल बात भी नहीं कर रहा उससे भी कह रहा है मैंने जाना है, कभी मैंने और आपने सोचा इस बात को, किसी बात कर रहे हैं, बात करते हमारे मुँह से निकले यार मौत भी आने की तैयारी की हमने। ईमान का ये तकाजा है कि मोमिन की ये शान है कि तमाम फिक्रों से ज़्यादा उस पर फिक्र मौत की हो, और जब मौत की फिक्र नहीं रहती तो इंसान फिर आज़ाद हो जाता है, फिर दुनिया के अंदर है और वो आ जाती है अचानक तो सारा काम ख़राब हो जाता है। हुस्न खात्मा जो है इंसान का, मौत जाने के बाद ही कहते हैं कि वो लम्हा जिस वक्त इंसान इस दुनिया को छोड़ता है उसको कहते हैं हुस्न खात्मा। हुस्न खात्मा क्या चीज़ है, असल फिक्र तो इसकी है, मौत से पहले इसकी फिक्र है कि मैं जब जाऊँ जहाज में बैठूँ तो मेरे पास सीट भी होनी चाहिए और टिकट भी होना चाहिए, फिक्र तो पहले इसकी है, सफ़र तो बाद में, तो भाई कब्र तो बाद में आएगी, मौत तो बाद में आएगी, हुस्न खात्मा के मौत के आने से पहले मेरी क्या हालत है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह से दुआ करनी भी चाहिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इंतहा दुआएँ बताई हैं इस सिलसिले में, अल्लाह नस्लों का हुस्न खात्मा, इतने ही आदमी कह ले दिन के अंदर कि अल्लाह मेरे खात्मा हासिल करना, लगता तो बड़ा आसान है कि जाएंगे जी हम नमाज पढ़ रहे हैं बस मुसलमान ही चले जाएंगे, हम तो रोज़े रख रहे हैं मुसलमान ही चले जाएंगे, हम तो जिक्र करते हैं मुसलमान ही चले जाएंगे, हम तो ज़कात भी देते हैं सदक़े भी देते हैं उम्र भी करते हैं हज भी करते हैं मुसलमान जाएंगे, लेकिन हुस्न खात्मा का मामला बड़ा अजीब है। देखिए हदीस मुझे याद आती है नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल आमालो बिख्वातिम, कितनी बड़ी हदीस है, देखिए ये हुस्न खात्मा की है कि जिस खात्मे की आप बात कर रहे हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखें, उस खात्मे का सारा इन्हासार किस पर है, उस आखिरी अमल पर है जिस वक्त आप मर रहे हैं, सुभानअल्लाह, कि क्या अमल आपसे सरजद होता है उस वक्त, अगर उस वक्त अमल हो गया सही तो समझो आप कामयाब दुनिया से चले गए, अगर उस वक्त अमल हो गया खराब तो समझो आप बिल्कुल ख़त्म होकर चले गए। ये नहीं कहा कि सारी जिंदगी अमाल पर है तुम्हारा खात्मे का इन्हासार, ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे सारे कुरानों पर पढ़ते थे उस पर है तुम्हारे असकार कब है तुम्हारे खताबत पर, नहीं कहा, उस वक्त जो अमल होगा जिस वक्त मौत आ रही होगी उस वक्त जो अमल होगा आखिरी उस पर डिपेंड करता है सारा खात्मा के इंसान के ईमान का। तो इतनी बड़ी वार्निंग दी है अल्लाह के नबी सल्लम ने, तंबीह अता फरमाई है कि ये मत समझना कि तुम आज जो अमल करते हो कल वो अमल तुम्हारी जबान से सरजद हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम होगा, सो बहुत मुश्किल काम होगा कलमे का निकल आना जबान से। वाकयात में है कि किसी इंसान के मौत हो रही थी तो मौत के बाद लोग उसको कलमा तलकीन कर रहे हैं तो यासीन पढ़ी जा रही है और वो क्या जवाब में कह रहा है, मुझे भी पिलाओ तुम भी पियो, मुझे भी पिलाओ तुम भी पियो। ये बिल्कुल सही वाक है क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने बेचारे शराब पी तो वो उस वक्त वो अमल उस पर गालिब आया, तो मुझे भी पिलाओ, तुम भी पिलाओ। ये कहते कहते उसका इंतकाल हो गया। तो मुझे और आपको क्या गारंटी है कि भाई ये जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, ये जिक्र हमारे जबान से निकल भी जाएगा या नहीं निकलेगा? सोचिए, ये जो कुलमा पढ़ रहे हैं, ला इला इल्लल्लाह के जबान पे आ जाएगा हमारे भाइयों? बड़ी रुकावटें होंगी इस वक्त आने के लिए, ये बता दो। छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता चलता कि कहां से हमारा ईमान खत्म हो गया, उसमें खात्मा हमारा, यानी जिंदगी में जो वक्त हमने किया होगा हम उसको भूल गए होंगे कि हमने क्या अमल किया था, क्या बुराई हमसे सरजद हुई थी, किसके साथ हमने ज्यादती की थी, किसके साथ हमने बुरा किया था, किसका माल हमने खा लिया था, किसके दिल को हमने तोड़ा था। उस वक्त जो ईमान की हालत हमारी ख़त्म हो चुकी थी, जिस वक्त इंसान मर रहा होगा तो वो गुना उस पर गालिब हो जाता है फिर, और उसके ईमान से रोक लेता है। बदन से निकला हुआ अमल और जबान से निकला हुआ बोल इंसान के रुख को बदल देता है। याद रखें, एक बोल इंसान को तबाह कर देता है जबान से निकला हुआ, और एक अमल बदन से निकला हुआ इंसान को खत्म कर देता है। याद रखें, इतनी एहतियात है जिंदगी के अंदर कि कांटों पर सफर है हमारा दोस्तों। हम तो थोड़ा सा एक नेक अमल करके बस चौड़े हो जाते हैं, ठप्पे लग गए हमारे पे, हम बख्शे गए। मोमिन मुतमईन ही नहीं होता जिंदगी में, याद रखें कि मैं यहां खैरी से जा भी सकूंगा नहीं जा सकूंगा, कोई अमल उसको मुतमईन कर ही नहीं सकता, कोई सी हालत के अंदर ही वो सेटिस्फाई नहीं होता, बल्कि हर अमल करने के बाद, हर फेल करने के बाद उसको खटका ये रहता है कि यार ये बताना अमल मेरा सही हुआ या नहीं हुआ। मौत इतनी बड़ी हकीकत है, ऐसी बड़ी चीज है कि वो तो आदमी तस्वीर भी नहीं कर सकता कि इस दुनिया से जा देते वक्त उसका हाल क्या क्या होगा, किस क्या हमारे जबान से कलमा निकलेगा, उस वक्त क्या चीज निकलेगा। जो लोग जा रहे हैं बेचारे निकल गए हैं, किस हालत में चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, क्या हालत थी उनकी, क्योंकि उनको उस वक्त के देखने के लिए एक ही चीज है कि उस हालात जिंदगी को इंसान देखना पड़ता है कि किस क्या आदि था। एक आदमी जिंदगी में जो काम करता रहा वो चीज पे गालिब होगी उस वक्त, वो निकलेगी वही चीज, कुछ दिमाग से निकलेगी एकदम, कलमे की जगह इंसान की वो चीज निकलेगी, गालिब हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें हमें पता नहीं चलता, किसी की बेदबी की है, किसी की हमने कुछ किया है, उसी वक्त ईमान से अल्लाह पाक फारिग कर देते हैं इंसान। एक ही कलमा है, बहुत एहतियात से जिंदगी गुजारने का है। हज़रत सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही मारूफ शख्सियत गुजरे हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और अपने उस्ताद की किताब को भी उन्होंने कम्प्लीट किया, सीरत नबी पर किताब अल्लामा शिबली नमानी लिख रहे थे। तो इतने होनहार शागिर्द थे अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने इस काम को मुकम्मल किया, और अल्लाह ने आखिर मन में उनको आखिरी उम्र से पहले अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ भी बख्शा कि हज़रत हकीम उम्मत के वो मुरीदों में शामिल हो गए, तब उनसे अपना तस्किया तस्फिया कराया। तो मकतब था उनका, मदरसा था, दारुलूम था, तो उसके मौत में भी थे। तो जैसे होता है बोर्ड पे इबारत लिख दी जाती है किसी किस्म की दारुलूम में, तो कोई इबारत लिखी तो बुखारी का कोई स्टूडेंट था, बड़ा ऊंचा अच्छा होनहार लड़का था। उनके बाल को देख के कहते हैं कि मौलाना का दिमाग खराब हो गया, बेद भी कर बैठा अपने उस्ताद की शेख की। हमें तो पता नहीं चलता हम किसकी बेद भी कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये कितनी मामूली बात है जिंदगी हमारी। अदब भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखें चीज़। बेअदबी को अल्लाह ताला से कसम जाती है, तो जैसे उसके जुबान से निकला कि दिमाग खराब हो गया इनका, मस्ती में जुबान से बात करती, इससे मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह कह दूँ किसी अपने अपने हजरत के बारे में कह दूँ ऐसी कोई बात, कितनी बड़ी बात है, ये क्या कर रहे हैं यार, इतना भी कह दिया जाए अपने शेख के बारे में, दोस्त के बारे में, उसकी इजाजत के बगैर भी कोई काम कर लिया जाए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बात कहां पर जाती है, ये नहीं कि सजा मिलेगी जहन्नुम में जाएगा दोज़ख में मिलेगा, नहीं, सजा मिलती है ईमान की, और ये कुरान बता रहा है ला तरफ, कुरान कहता है ये मेरे हबीब से सुन सामने जबान का भी ऊंची आवाज से ना बोलना, सजा क्या दी जा रही है, तहन्नुम की नहीं बल्कि किसी जा रही है, सलब किए जा रहे हैं, ईमान सलब किए जा रहे हैं, वो कितने बड़े बड़े सहाबी थे, मुझे आप बताएं कि मौली बात है ये, बादब होना कितनी बड़ी चीज है, जैसी लफ्ज उसके जबान से निकले नहीं और वो पागल हो गया, तो वो तो उनको कह रहा था, अपने शेख को कह रहा था कि दिमाग खराब हो गया, अल्लाह को गवारे ही नहीं गुजरा सो कि इतने इलम के बावजूद वो लड़का इतना होनहार आदमी था, इतना दिमाग खराब हुआ, इतना पागल जुनून हुआ कि उसको रस्सियों से बांधना पड़ा घर के अंदर, जंजीरों से बांधना पड़ा घर के अंदर, कोई इलाज नहीं हो सका उसका, इसी हालत में था घर के अंदर, चीख होगा बस पागल हो गया, तो ये अदब की जो जगहें हैं बहुत बड़ी कीमती चीजें होती हैं भाइयों, याद रख दर्जात भी बादब लोगों के बहुत बुलंद, सबसे बड़ी इबादत है अदब, ये बता देता हूं, बादब बानसी, बेअदब इससे बड़ी कोई इबादत होगी मुझे बताएं यार, जो बादब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वो हर हर मुकाम तय कर जाएगा अल्लाह के फजल से, जिस जगह पर अदब करेगा, जो बेअदब हुआ वो तो एक इंच भी नहीं हिल सकता, इसलिए हमारे अपने मशाइख कराम अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद करने से पहले मुरीद को बताते थे कि भाई अदब सबसे बड़ी चीज़ है, अदब सीखो, और सारे मशाइख कराम जितने भी है कादरी सिलसिले के, चुश्तिया सिलसिले के, हमारे सिलसिले में तमाम मशाइख कराम ने बाकायदा लिखा है अदब के बारे में, अदाब मुरीद पढ़ के देख लिया, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने लिखा है, ख्वाजा गरीब नवाज का भी है, और इतने बड़े बड़े लोग गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसके बारे में लिखे, आज मुजद सानी रहमतुल्लाह ने नक्शबंदी सिलसिले तो खैर है ही चीज़ बहुत बड़ी, बादम बानसीब बेअदब खेलते रहते जिंदगी में भी, और ये सबसे बड़ी निशानी है कि पैदल हो गया, अब ये नहीं है कि सारी जिंदगी आदमी अच्छे काम करता रहा, कि जहां उससे एक काम सरजद हो गया छोटा सा भी, जिस हम छोटा कह रहे हैं तो असर कहां पर गया, ईमान से खारिज होकर इस दुनिया से चला गया, ईमान उसके साथ नहीं रहता, बदब तो बहुत बड़ी चीज है, और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बुखारी का दर्स दे रहे थे, तो कोई आज उस समय ऐसे मदरसे नहीं थे ना, कभी बिल्डिंगे बनी और कारपेट बिछे हैं और एयर कंडीशन लगे हैं मदरसों में, अब तो माशाल्लाह, तो जमानत ये थे कि भाई कच्चे छप्पर होते थे, कोठी कच्ची बैठ के लोग पढ़ते थे, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह बुखारी का दर्स दे रहे हैं, क्या समा होगा मुझे बताएं, कैसे शागिर्द होंगे, कैसा उस्ताद था, क्या मार्फत चल रही है, बुखारी का दर्स है, हवा चल पड़ी गर्म, आंधी की शक अख्तियार कर ली हवा ने, ज़ाहिर है फिर जब तेज़ हवा चलती है तो बरखे, बुखारी की किताब थी उस ज़माने में काफ़ी बड़े बड़े बरखे होते थे बुखारी के, तो उड़ने लगे बरखे, पढ़ते थे तो उड़ने लगे हवा के साथ, आपको तजुर्बा हो कभी देखा मशता होता है जब हवा तेज़ चलती है, हम तो रहें देहात में हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह उड़ते हैं ना बरखे हवा के साथ, आंधी आती है तो किताब पढ़ ही सकता आदमी जब पढ़ रहे, तो लोगों ने फिर क्या करता है कोई कुछ उस पर हाथ रख देता है, कोई कलम रख देता है, कुछ किताब रख देता है, तो उस बेचारे की क्या हरकत की उस शख्स ने, उसने पांव रख दिया किताब के ऊपर उसको रोकने के लिए, फारिग तो हो गया, वो फारिग होने के बाद आलिम नहीं बना, मुल्हिद बन गया। बोले समझते ईमान से जो खारिज हो जाता है, और जिस तरह आलिम तबलीग करते हैं ना ईमान की तरफ लाने के लिए लोगों, तो वो तबलीग करता था कुफर की तरफ लाने के लिए लोगों। क्या किया उसने, बेअदबी की थोड़ी सी। सारे हुस्न खात्मा के मामूलात हैं मेरे भाइयों ये जिंदगी के अंदर, एक एक कदम इंसान को जहां जहां जा रहा है उस जगह को पहचाने, उस अदाब को जाने। क्यों ये ना कहे कि इससे मामूला नहीं, फिक्र करे किस चीज का, इससे मेरा आखिरत का मामला है। ये सब जाके मिलती हैं, कड़ी जितनी भी हैं सब जाके किससे मिलती हैं, मेरे आखिरत से मिलेंगी। सारे अमाल शमाल काम नहीं आते, आखिर में वही चीज काम आती है जो उसने की है, जो उसने हरकतें की है। तो जब इंसान खात्म होता है, अल्लाह के नबी शायद फरमाए कि खात्म ईमान किसके साथ होगा, आखिरी मल के साथ होगा, जो आखिरी मल होगा हमारा। क्या है हमारा ऐसा अमल जब आखिर तक ले जाए, मुझे बताया। उसके लिए तो बहुत मेहनत की जरूरत है कि यार उस वक्त ऐसा अमल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दिया कि सबसे बेहतरीन अमल जो होगा आखिरत का ऐसा हो, अल्लाह कि तेरी मौत तो ऐसी होनी चाहिए, अपने साहबी को बता रहे हैं ऐसी मौत हो तेरी कि तू इस दुनिया से जा रहा हो और तेरे जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी हो। तमन्ना फी हर उम्मती के लिए अल्लाह के नबी वसल्लम। कितने उम्मती मेरे भाई इसकी तैयारी करते हैं मुझे बताएं, कितने लोग इस पे लगे हैं। जब ये कहा इसको अल्लाह ताला ने जिक्र कसीरा, इंतहाई कसरत की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह जबान से जब निकले तो हमारी जबान से अल्लाह निकल रहा हो, अल्लाह निकल रहा हो, शहादत का कलमा निकल रहा हो। जो आदमी नेकी करेगा, नेक अमल करेगा तो उस वक्त नेक अमल निकलेगा, बद अमल की जिंदगी गुजारेगा तो बदी निकलेगी इंसान। कंबाइन रखेगा जिंदगी नेक और बदी, ये भी याद रखे। आम जिंदगी क्या होती है हमारी, जिक्र भी है और फिक्र भी है। फिक्र किस चीज का, दुनिया का, जिसको आजकल हम कहते हैं दुनिया भी हो जी, और कहते हैं क्या आखिरत भी हो और दुनिया भी हो, दीन भी हो दुनिया भी हो। यह आज टर्म है बहुत मशहूर, दीन भी होनी चाहिए दुनिया भी होनी चाहिए। ये पता नहीं कौन सा मजहब निकाला है, दीन भी होना चाहिए दुनिया भी चाहिए। दीन तो दोनों जगह है, दीन ही तो दुनिया बनाता है, सुभानअल्लाह। दीन है तो दुनिया बनती है, खुद ही दुनिया बन जाएगी। दीन नहीं है तो दुनिया कहां से बनेगी, मुझे बताया। दीन ही तो दुनिया बनाता है, जो दीन के बगैर दुनिया है वो तो दुनिया है ही नहीं, वो तो दुनिया भी नहीं है। ये भी याद रखें कि जिस मेहनत कर रहा है आदमी जिक्र पर, यहां खालिस जिक्र की बात है, वो नहीं कि जिक्र भी हो और दूसरा काम भी हो, नहीं। वो जिक्र उस वक्त कलमा जबान से अल्लाह उस बंदे का निकलेगा जिसने दुनिया के वक्त सारी जिंदगी उस जिक्र की तैयारी ऐसी की हो कि उस पर गंदगी का मैल ना आया हो, गंदगी के छींटे ना पड़े हो उस पर, गंदगी की चीजें ना पड़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी तैयारी करते हैं, आप भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए हमारी तैयारी को। लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखें, बड़ा सच्चा वक्त होता है वो जिस वक्त जान निकल रही होती है, वहाँ कोई दोगलापन नहीं चलेगा दोस्तों। जिंदगी की सारी कोशिश इंसान की बेकार हो जाती है। तो इसकी तैयारी का बेस्ट तरीका जो है उस खात्मा के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो यह है इंसान अल्लाह के जिक्र को पाबंदी से पकड़े, इतना जिक्र को गालिब कर ले अपने जहन पर, अपने दिल पर इतना गालिब कर ले कि जिस तरह चलते फिरते, मैंने बताया एक आदमी कहते हैं मैं एयरपोर्ट पर टिकट लेने जा रहा हूँ, फला जा रहा हूँ, इतना गालिब हो कि इंसान दूसरे से बात भी कर रहा हो तो जिक्र की बात मुँह से निकल जाए उसके, सुभान अल्लाह। खुद ब खुद निकल जाए जिक्र की बात सुनूं उसे, यार क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं, कहाँ रहते हैं आप, आजकल क्या काम कर रहे हैं, ये बातें होती हैं ना। मैं उधर काम को बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, और क्या सुना है आपके, कितने बच्चे हैं आजकल, कितने कारोबार अपना चीन है, बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह यार, बस बहुत अच्छे हैं, मन अल्लाह का जिक्र हो जाए तो इंशाल्लाह बड़ा काम चलता है, हर चीज़ें आसान हो जाती हैं, खुद ब खुद जिक्र की बात निकल रही है, यानी लाशोरी तो आप उसके मुँह से निकल रही हो बात, जैसे टीका टीका और जहाज की निकलती है ना, तब समझें कि जिक्र गारिब हो रहा है। जिक्र से नस्बत करने वालों की बात है, यार मेरे हजरत ऐसे हैं, मेरे हजरत बैठे थे, बड़ा मजा आता है यार, कल हम मजलिस में गए थे, एकदम टर्न हो जाए सारा सिलसिले बात करते करते, अच्छा यार आप इस लाइन में, हाँ यार हम तो इस लाइन पर चले गए, और मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे जिक्र गालिब होता है वो कई इंसानों को जिक्र जिक्र पे ले आता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कहते यार अच्छा हमें भी बताएं कहाँ है आपकी हजरत, जी वो आप चले मैं आपको बताता हूँ, आए एक दिन आप पढ़ के देखें बात कहाँ जा रही थी और बात कहाँ प्या कर रही है। मैंने देखा ऐसे लोगों जिनके जिक्र गालिब होता है ना, वो कई इंसानों को घसीट लाते हैं अल्लाह के जिक्र में और उनको जाकिर करवा देते हैं, ऐसी तो बनता है सिलसिला, शमा से शमा जलती है दोस्तों, हर वक्त गालिब उस पर जिक्र होता है, तो जिस वक्त मौत आती है तो गलबा तो है अल्लाह के जिक्र का, ना किसी और चीज़ का है ही नहीं उसके, जो दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब उसके नीचे होती है। देखा तलबा ही मोमिन पे ये होता रहो, निकमल करे सारे नेक अमल अल्हम्दुलिल्लाह, मौत की नीयत से उसने खात्म से, लेकिन अल्लाह के नबी सबसे शास्त्र में आया कि बेहतरीन मौत यह है कि अल्लाह नाम मुख निकले, उस वक्त कोई अमल जो सबसे बेहतरीन अमल ये क्या है, कलमा निकल अल्लाह जबान के साथ। तो मेरे भाई हो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी और आप भी लगे हैं इसी काम पे, नमाज पढ़ने जाएं तो एक नियत कर लें कि मैं किस लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, या मैं अपने खात्मे के लिए पढ़ रहा हूँ, वो नमाज डिफरेंट हो जाएगी आपकी। फिर कहाँ जा रहे हैं आप, आपकी भी पूछती भाजी मैं जा रहा हूँ मौत की तैयारी करने जा रहा हूँ, सीधी बात अल्हम्दुलिल्लाह, मौत की तैयारी कि नमाज से बेहतरीन और कौन सी तैयारी हो सकती है, हर कदम पे अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। जिस वक्त कोई नेक अमल करने कुरान खोल रहे हैं, सबसे पहले ये है कि यार मैं कुरान पढ़ रहा हूँ इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं इसमें तफसीर सीखूंगा, कोई इसमें मसले सीखूंगा, या मैं कुछ सीखूँ, नहीं मैं इसको गवाह बना रहा हूँ कि जिस वक्त मैं मर रहा हूँ तो कुरान मेरी मदद करे और शफात करे, मैं अपने खात्मे की नीयत से पढ़ रहा हूँ। देखें इस कुरान का पढ़ने का स्टाइल आपका जो है डिफरेंट हो जाएगा। दो तीन बातें याद रखें उसके लिए, हुस्ने खात्मा के लिए जो जहन में आ रही हैं आपको, कर एक बात तो पक्की याद रख लो, किसके बगैर उसमें खात्मा नेकी नहीं आएगी, कि जब अल्लाह ताला नेकी की तौफीक दे दे तो उस पर इस्तकामत अख्तियार कर ले, इस्तकामत समझते हैं स्टेडफास्टनेस, उसको पकड़ ले ऐसे हाथ से, ये नहीं जाएगा, जैसे कभी 50 का नोट आ जाए ना हाथ में, हवा में उड़ता उड़ता हाथ में आ जाएगा, तो ये तो अब नहीं जाएगा यार, अब तो उसको पकड़ लिया, मुट्ठी से नहीं निकलने दूंगा, अब तो इसको जेब में लेके जाऊंगा किस तरीके से। जब नेकी के अल्लाह पाक तौफीक दे रहा है, अल्लाह ताला जिक्र की तौफीक दे दी है, और ये बहुत बड़ी चीज है जो तौफीक मिली है, बहुत बड़ी नेमत है, इसके साथ खेल ना करे, सुम मस्तकाम अल्लाह ताला का कि जो इस्तकामत इस्तखार करते हैं किस वक्त दुनिया में, तो उसका सिला कहाँ मिल रहा है, मैं बताया ना हर नेकी का असल रिजल्ट कहाँ निकलता है, अल्लाह ने नहीं फरमाया कहाँ निकलता है, मौत के बाद, तो फरमाया इसकी इस्तकामत का जो बदला देखना चाहते हैं तो कुरान बता रहा है क्या निकलेगा, तनज़्ज़ुल मलाइका, उस पर नज़ूल हो रहा होगा रहमत के फरिश्तों का। साथ मैं अब यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे, ये दुनिया गायब हो जाएगी, अब मैं यही हूँ, मेरी आँखें खुली हैं, यानी इस आँख इस दुनिया से लोगों समझ रहे हैं, दुनिया वाले समझ रहे हैं मेरी आँख बंद हो गई, लेकिन दुनिया खुली है, जैसे अब मेरे सामने आप बैठे हैं, अब मैं फरिश्ते नजर आएंगे मुझे इस बार नूरानी शक्ल में, जन्नत के लिबासों में, हसीन तीन मतलब खुशबू के साथ, वो उस आदमी को मुझे कितनी खुशी होगी, मुझे अभी तो आप मेरे सामने बैठे हैं माशाल्लाह, आप भी बहुत हसीन खूबसूरत इंसान है, लेकिन अगर फरिश्ते आ जाए तो फिर और बात हो जाएगी, फिर तो सिलसिला और बन जाता है ना। तो इस चीज को देखने के लिए ये मौत की बात देखें, कुरान कैसी प्यारी बता रहे हैं और कितना आसान है आज हमारे लिए, कितनी लजीज इंसान के लिए मौत बन जाए जिससे हम लोग डर रहे हैं। हम कहीं इससे डरता था मैं यार इस मौत से, ये तो हजार दफा आया ऐसी मौत उस बार, क्या दुनिया में फंसा हुआ था कैद खाने के बाद। तो उसके लिए सबसे बड़ा अमल क्या चीज बताया अल्लाह पाक ने, क्या बताया मुझे बोलो, इस्तकामत, स्टेडफास्टनेस। कुरान बता रहे हैं उसका तो इतना बस असर होता है कि मैंने तुझे किसी नेकी की तौफीक दे रहा हूं तो फौरन कैच कर ले कि ये मेरे हुस्न खात्मा के लिए बड़े खूबसूरत माल आ गया मेरे पास, इसको तो नहीं छोड़ दो। ये आदमी जो मुझे मिल गया इससे तो मुझे कमाल ही कर दिया, कहां पहुंचा दिया, क्या चीज सिखाई है अल्लाह, अब जिसने अल्लाह सिखा दिया है अब ये अल्लाह नहीं छोड़ सकता मैं इसका, पक्की जफी डाल ले आदमी से चांद चली जाए। सबसे पहले जो काम मैंने करना है दिन में जो मेरे शेख ने बताया है उसी को करूंगा, उसके बाद फिर दूसरे काम शुरू करूंगा। इसको क्या कहते हैं, इस्तकामत, इस्तकामत। हजरत अली करम को भी वजीफा बताया था, दामाद भी थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी बेटी भी बैठी थी, दोनों बैठे थे, कहते लो मैं तुम्हारे इनका वजीफा बताता हूँ, ये वजीफा पढ़ो बहुत काम कम है। तो शेख भी तो नबी भी थे, तलकीन फरमाया उनको भी वजीफा, जैसे शेख तलकीन फरमाते हैं उनको भी तलकीन फरमाया, उम्मत ने छीन लिया ना हमने उनसे, हमने भी उनसे छीन लिया, हमने भी छीन लिया, जिसको हम तस्बीह फातिमिया कहते हैं, हमने उनसे मिलाया ना, उनको था तो उनके लिए लेकिन हमें बता दिया कि चलो तुम भी करो उम्मत हो तुम भी। तो इतनी इस्तकामत थी हजरत, अब हजरत अली बाबुल इलम है मुझे बताया, उनको वजीफों की कमी थी है? उनको कोई खात्मा हुस्न खात्मा को अमल करने के लिए कमी थी, लेकिन फरमाते हैं कि जिंदगी भर मेरे शेख ने जो मुझे वजीफा बताया था सबसे हार्ड वक्त मेरे पर जंग हनैन थी, शायद कोई जंग की बात बताई उन्होंने, उस वक्त ऐसा रात थी कि सबसे सख्त रात थी मेरी जिंदगी में, लेकिन अली ने उस वक्त भी अपने शेख का वजीफा नहीं छोड़ा, अदा किया। इसको कहते हैं इस्तकामत, आदत डाल ली है, हमने जुमेरात को जिक्र पे जाना है, इस्तकामत। क्या चीज रोक सकती है हमें, कुछ नहीं, ताकि कोई ऐसी चीज हो जाए जो अल्हम्दुलिल्लाह गैर मामूली हो इंसान के, छोड़ सकता है क्योंकि तो उसने खात्मा का मामला बन गया, इस पर इस्तकामत मैंने की नहीं और उसमें खात्मा मुझे मिलाएंगे, तो फिश्ते उतरेंगे, खुशखबरी लाएंगे, जन्नत की बातें करेंगे, तुम्हारा इंतजार हो रहा था तुम कहां था, रिश्तेदारों से मिलाएंगे, जैसे मौत आती है बरज़ख में सारे रिश्तेदार आते हैं, भाई क्या हाल चाल है, फला आदमी क्या कर रहा था भाई, वो मेरा बेटा फला बेटा वो क्या कर रहा था, मेरी बेटी उसका क्या हाल चाल था, वो ठीक थे सब, हालात होते हैं बाकायदा कन्वर्सेशन होती है उस आदमी की, जिनकी माएँ बिछड़ी हुई हैं, जिनके बाप बिछड़े हुए हैं, जिनकी औलादें बिछड़ी हैं, हमने अपनी वालदा को नहीं देखा, दो साल का था डेढ़ साल का था, वालदा इंतकाल कर गई, जब वहाँ वालदा आ जाएंगे देखने तो फिर कितना मजा आएगा आपने बताए, कैसा लुत्फ आएगा, मम्मी आ गई अम्मी आ गई, मुझे मज़ा नहीं आएगा जी बताएं। ये तो एक थोड़ी सा एक गैप है, वो भी खुश होंगे माशाल्लाह देखो मेरा बेटा अल्लाह के वली बन के आ रहा है, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आप जब जाएंगे तो आपकी वालदा खुश नहीं होगी कि मेरा बेटा अल्लाह के वली बन कर आ रहा है, मुझे तो खैर वहाँ भी जूते पड़ेंगे, मेरी वालदा कहेंगे वहाँ भी नालायक थे यहाँ भी नालायक बन के आ गए, तो कुछ तो काम करना दुनिया के अंदर, आप आजाद के लिए होगा रियायत की खुशी में सुनेंगे जब आपके वालदान तो कितने खुश होंगे। तो ये तो इतना बड़ा एहसान की अल्लाह पाक ने खजाना डाल दिया, अब हम पढ़ते हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत के खजाना में अता फरमाते अल्लाह पाक, ये कम है, अब क्या है हम इसको फेंक दें, नहीं यार आज नहीं करते यार हम, बस छोड़ो इसे क्या करना है, अल्लाह का नाम क्या लेना है, छोड़ो आज नहीं लेते हैं, नहीं बीवी नाराज़ हो जाएगी यार, बीवी कह रही है कि नहीं तुम बस अब ये काम छोड़ दो, वरना याद रखो वीकेंड भी ये काम नहीं कर सकते, तुम फला दिन नहीं जा सकते, फला दिन जा बस तस्वीर रख दो, ये नहीं कर सकते हो, बच्चों का ख्याल नहीं है तुम, उसका ख्याल नहीं है, ये तो हवादत से दुनिया है, इससे थोड़ी छोड़ देना खात्मा, मैं ये दुकान की कर ये दुकान जाना पड़ता है, ये सुबह उठना पड़ता है, ये क्या करें दुकान के चक्कर में, हम क्या करें उसके चक्कर में, हम क्या करें, उधर अल्लाह ने आपको एक वजीफा दिया, ये अल्लाह दे रहे हैं, मुझे और आपको किसने भेजा हमारे शेख के पास? या नबी जाकल मोमिनात, अल्लाह ताला कहता है मैं भेजूंगा, मेरी तरफ से आएंगी शेख तेरे पास आ गई। कौन भेजता है? मुझे बोल। तो अल्लाह तुम्हें भेज रहा है, चलो मैं तुम्हें उसमें खात्मा का खजाना दे रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह कहना सीख जाओ, मरते वक्त भी तुम्हारी जबान से अल्लाह निकलेगा। तो हम उस पर इस्तकामत, तो पहली चीज क्या है जो आ सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्रेव है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने दिन में 5 दफा भी जिक्र करा दे तो समझो हमारे मेरे लिए हो रहा है, मैंने 5 दफा जाना है। ये नहीं उसके लिए हो रहा है, उस मस्जिद के लिए हो रहा है, नहीं, कहेंगे तो मुझ पर कर्म हो गया है, ये मिठाई तो मुझे रखी तो मैं घर बैठूं, 5 दफा हो रहा है तो 5 दफा जाए, 6 दफा और तो 6 दफा जाए, इससे बड़ा और मेरे लिए क्या नेमत होगी? मैं अभी मैं मर जाऊं तो अभी इस्तकामत पे मेरे इस नाम पर मेरे कितने, नहीं नहीं अपनी मर्जी से कभी इधर आ रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, ये ढकोसले नहीं चलते भाई, आखिरत में मौत के वक्त नहीं चलेंगे, आप करते रहे जो करते, मौत के वक्त ये चीजें नहीं चलेंगी, ना आपके आने से मुझे खुशी होती है ना आपके जाने से मुझे गम, मुझे तो कुछ गम खुशी नहीं है, 2 हो 3 हो 5 हो 100 हो 1000 हो 1500 हो 2000 हो 3000 हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखने वैसे ही बोलता हूँ वैसे जिक्र कराता हूँ, कितने बड़ा मजमू हो कितना बड़ा मजमू है, ये बात नहीं है, कोई बैठो आलिम बैठो ना बैठो सूफी बैठो अपना अंदाज तो वही है, क्योंकि हम तो किस लिए कर रहे हैं? मेरे शेख ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, मैं उस ड्यूटी पर लगा हूँ, मक्खी भी आ जाए तो मैं बैठ के मक्खी के साथ जिक्र कर लूँगा, चूहा आ जाए तो चूहे के साथ कर लूँ, कोई भी मखलूक आ जाए उसको अल्लाह का जिक्र सिखा दूंगा, आप आ जाए मैं आप साथ कर लूँगा। अगर आप इस काबिल समझते हैं मुझे कि इस आदमी के साथ बैठ के जिक्र करना चाहिए तो फिर क्यों नहीं आते? अगर मुझे समझते हैं कि इसके साथ बैठ जाए, नहीं समझते वो आपकी मर्जी है, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो कोई अख्तियार नहीं ना, उसमें फजूल आदमी इसके साथ क्या बैठना बेशक ना है, लेकिन अगर आपको समझता है फायदा है जिक्र में है तो फिर तो इस्तकामत होनी चाहिए। 10 दफा हो रहा है 10 दफा आसान बात है कि इतनी बड़ी, इतनी मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई शेख बैठ के इतनी मजाले से करता हो। ये कौन है? ये तो उसका फजल चल रहा है कि मुझे भी तौफीक मिलेगी आप लोगों की बरकत से, कितना बड़ा इसको हम कर्म समझें सजा समझेंगे इसको, मुझे बता, हम अल्लाह ताला के हर काम को सजा समझ जाते हैं, ये तो अल्लाह का करम से एक करम है, बहुत बड़ा लाजवाब करम है, अल्लाह दरवाजे खुले जा रहे खुले जा रहे, एक दफा ओ जिक्र हो रहा है माशाल्लाह, नोटिफिकेशन बहुत अच्छी बहुत अच्छी, आज भी हो रहा है, ओ ईद को भी हो रहा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। एक साहब मुझे मेरे कहते हैं आपको तो कमाल करते हैं, कहते ईद वाले दिन भी लोगों को छुट्टी नहीं देते आप जिक्र से। मैं यहाँ छुट्टी है ही नहीं, छुट्टी तो उस वक्त मिलेगी जब जन्नत में जाएंगे, तो जन्नत में भी जिक्र होगा, वहां भी मेरी जमात बैठी होगी, मैं वही काम करूंगा, नोटिफिकेशन वहां भी जाएंगे, आप तो ऊंचे दर्जे पे होंगे मैं नीचे भी होगा, मैं कह भाई तो नीचे तशरीफ ले आज जिक्र होगा मेरे खान का मैसे बोले सुभान अल्लाह। तो ये तो आदत पड़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, आदत को नहीं खत्म हो सकती ऐसी आदत है, सोते सोते उठने में अल्लाह का जिक्र चलते हैं, आप कहाँ हो रहे हैं उस जगह हो रहे हैं चलते हैं, आज कहें ब्लैकबर्न में चलो वहीं चलते हैं, आज कहाँ लोग ग्लासगो में वहीं चलते हैं, लंदन में हो रहे हैं वहीं चलते हैं, आप ऐसे ही माशाल्लाह आप पहुँचते हैं आप सारे, तो इसको ऐसा पक्का हो जाए अंदर इंसान का जिक्र, पहली चीज़ तो यही खात्मा ईमान के लिए बहुत बड़ा खजाना है अल्लाह का जिक्र, नाम अल्लाह का इसको तो नहीं छोड़ना, जितनी दफ़ा लेंगे उतना ही कम है याद रखें, जितनी दफ़ा करोड़ दफ़ा लेंगे तो करोड़ दफ़ा ही कम ही है याद रखें, तो ये तो पक्का चीज़ इंसान। दूसरी चीज़ जिस इसमें इस्तकामत होती है, दूसरी चीज़ में इस्तकामत होता है इसका नूर बकार, वो क्या है? वो गुनाह, जो गुनाह आज हमने छोड़ा है उस पर इस्तकामत हो जाए कि अब नहीं कभी करना बस खत्म, मैं छोड़ दिया मैं नहीं कर सकता ये काम, फनिश, ये क्यों कर रहे हैं इस्तकामत इस तरफ क्यों कर रहे हैं? उसने खात्मा गुनाह नफ्स मजबूर कर रहा है करने को खात्मा, आपको इस्तकामत तोड़ रहा है, कहते ये तो मुझे शैतान है मुझे मेरा जो उसने खात्मा उसको ख़त्म कर रहा है, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैंने इसमें इस्तकामत करनी है, तो नेकी पर भी इस्तकामत और गुनाह छोड़ने पर भी, ताकि एक तरफ आदमी लगे। अगर ये ख्याल है कि जी दुनिया भी रहे आखिरत, जिस तरह लोग कहते हैं क्या दीन दुनिया जो है जिक्र भी रहा बोल भी रहे, तो फिर मैं आप बता रहा हूं कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा जिक्र कामयाब नहीं होता, दुरानी बनाना पड़ता है जिक्र। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये नुस्खा है बहुत कीमती है, दूसरे खात्मा को इसको करें। दूसरी चीज सबसे बड़ी जो अल्लाह के नबी खुद फरमाते थे वो दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अन्तल वहाब, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका। इसके बाद एक कलमा पढ़ रहे हैं, या मुसर्रफ़ुल क़ुलूबि सर्रफ़ क़ुलूबना अला ताअतिका। हदीस में आता है कि जो इस दुआ के बाद ये कलमा पढ़ेगा उसने खात्मा उसका नसीब हो जाता है।
सुभान अल्लाह,
ये दुआ है, इसको पाबंदी से पढ़े दोनों चीजें साथ। अक्सर मैं तो ये दुआ करते हैं, आप देखते हैं तो हमेशा तो दुआ भी हो और जो अमल नसीब फरमा दे अल्लाह उस पर इस्तकामत भी हो और उस पर खुशी भी हो, अल्लाह का शुक्र भी हो। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे, इसका फिक्र भी हो।